हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम दूसरे स्कंद का संक्षिप्त वर्णन पार्ट टू। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा प्रलाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति।
आराध्यो भगवान ब्रजेशतनाय तत्थाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना व्रजवधो वैकीनया कल्पिता। श्रीमद्भागवतम् रामायणमालम् प्रेमापमर्थोमः श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदम् तत्राधरो नापर वंशी विभूषित करा नवनीरधाभीतांबर दरुण बिंब फल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जानि। करारविंदे न पधारविंदम् मुखारविंदे विनिवेशयन्तं पटस्य पत्रस्य पुटीशयानं बालं मुकुन्दं मनसास्मरामि। श्रीकृष्णगोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्व मृतुमेत देव गोविंद दामो धरमाधवीति महावीरम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारा बिभ्राद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालम् रन्ध्रारेणु अदरसुदया पूर्णयन् गोपवृन्द वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् कीर्तकीर्ति। जय जय श्री राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपी चितिचोर प्रभु जय जय माखनशो। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। तो कल हमने श्रीमद्भागवतम के दूसरे स्कंद के दो अध्याय का वर्णन किया। अब उसके अंत में दूसरे अध्याय का जो अंतिम भाग है श्लोक नंबर 35, 36, 37 वहां से हम प्रारंभ करेंगे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को फाइनल मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है फाइनल आंसर देते हैं कि जीव क्या करे क्यों करे। तो उसके लिए बहुत ही सुंदर एक श्लोक वो उच्चारण करते हैं 2.2.35। वे कहते हैं भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दृश्यैर्बुद्ध्यादिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापक। भगवान सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु मतलब भगवान का क्लियर मतलब है भगवान श्री कृष्ण, और सर्वभूतेषु मतलब जितने भी जीव हैं, सारे जीवों में लक्षिता, लक्षिता मतलब देखे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा जीव हो सकता है जिसके अंदर भगवान ना हो, प्रत्येक जीव के अंदर भगवान है। और किस स्वरूप में? स्वात्मनाहरी, स्वात्मना मतलब आत्मा के साथ परमात्मा के स्वरूप में भगवान हरि प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के स्वरूप में भगवान बैठे। कितना बड़ा आश्वासन है ये, कोई भगवान साक्षात जो पूरे विश्व का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का नहीं, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांडों का जो स्वामी है, जो प्रत्येक वस्तु का स्वामी है, जो प्रत्येक जगत का स्वामी है, जो शिव नारद ब्रह्मा जी का स्वामी है, वो भगवान हमारे हृदय में बैठा हुआ है। ये कितना बड़ा आश्वासन है एक एक जीव के लिए कि उनके हृदय में साक्षात परब्रह्म भगवान बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हुए? भगवान कहते हैं कि पितामहस्य जगतो, मैं तुम्हारा पिता हूँ। सुहृदम सर्वभूतेषु, भगवान आपका वैल विषय है, भगवान प्रत्येक जीव का सुहृद है। और जब भगवान हमारे पिता है तो लक्ष्मी हमारी माता है, है ना? कितना बड़ा आश्वासन है ये कि भगवान और लक्ष्मी और लक्ष्मीपति हमारे हैं, है ना? इस संसार में भी यदि कोई बड़ा व्यक्ति जो कह दे कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका आपका सुहृद हूँ, वेलविशर हूँ, तो हम कितना चिंता रहित हो जाते हैं कि वो है ना मेरे साथ, और वो तो पता नहीं हमारे साथ कितना सिंसियर हो, लेकिन वो भगवान जो हम चाहे किसी भी भावना से जाएं, हम चाहे कैसे भी भगवान की शरण में जाएं, परंतु वो सदैव हमारा सुहृद होता है। वो पूतना जो भगवान के सामने गई है किस लिए? जहर पिलाने के लिए, भगवान को जहर पिलाने के लिए कि मैं उसे मार डालूंगी। अहो बकेयम् स्तनकालकूटम् जिहाम सयापा ययदप्य सात्वी लेभे गतिम्दा त्रिचुतं ततोन्यं कम्वादयालुं शरणं रचेमा। वो तो जहर पिलाकर भगवान को मारने के लिए गई, परंतु भगवान इतने सुहृद हैं, इतना प्रेम करना जानते हैं कि भगवान जो है वो उन्हें अपनी माता की गति दे देते हैं, है ना? ऐसा कौन हो सकता है? क्या भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई ऐसा कर सकता है? कौन सा काम है जो कृष्ण ने भगवान जैसा किया? वो तो अपने भक्तों का सेवक बनने के लिए तैयार है, वो अपने भक्तों का ड्राइवर बनने के लिए तैयार है, वो अपने भक्तों को सुख पहुंचाने के लिए, आनंद पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो उनका स्वभाव ऐसा है, वो कुछ भी करता है। अभी भगवान है, उनको क्या आवश्यकता है कि वो दुर्योधन की 56 भोजन को त्याग कर विदुर जी के घर में केले के छिलके खाते हैं? क्या क्या ये शोभा देता है भगवान को कि इतना दरिद्र ब्राह्मण जो उनके यहाँ पर चावल लेके आता है, वो चावल भी किसी से मांगे हुए लेकर आता है, और उसके अंदर तो वो एक छोटी सी पोटली बना के वो तो छुपा रहा होता है। जब द्वारिकाधीश का वैभव देखता है, क्या दिखाऊं मैं उसको कि क्या लेके आया हूँ, लेकिन वो तो बस इतने से भी रीझ जाते हैं, उनको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। देखो, भगवान को केवल प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है, प्रेम से ही रिझाया जा सकता है, और प्रेम में कुछ भी आपको नहीं देना, केवल हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा की ओर सन्मुख हो जाना है बस। कि भगवान ने तो ये बता दिया, ये स्पष्ट कर दिया हमारे हृदय में आकर विराजमान होकर कि मैं आपका हूँ, बस हमें उन्हें रिजल्ट में ये बताना है कि हम भी आपके हैं। ये हमें हमेशा एक बात याद रखनी है कि वो सर्वशक्तिमान भगवान जो प्रत्येक जीव का वेलविशर है, उसका निवास स्थान मेरा हृदय है, वो मेरे हृदय में रहता है, वो प्रत्येक क्षण मेरे मुझे देखता है, बस उससे प्रेम करना ही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, उससे कहीं से नहीं आना, वो तो मेरे हृदय में रहता है, बस मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम उत्पन्न करने कुछ ऐसा कार्य करना है, जैसे हमने कल पढ़ा कि क्या क्या करना है, रति आत्मन यतो भवेत। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, समस्त वेदों का सार क्या है कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे भगवान के अंदर हमारी रति विकसित हो, भगवान के अंदर हमारा प्रेम विकसित हो, फिर कुछ नहीं देखता कि कितने कितने जन्मों में कितने कितने काले करतूत करके आए, कुछ नहीं देखता, कभी नहीं बोलेगा कि आप इतने अपराधी हो, आपने ये किया, नहीं, सन्मुख होए जीव मोहे जब ही जन्म कोटि अगन नासव तब ही, जन्म जन्म के जितने भी अपराध है उसी समय क्षण क्षण में क्षीण होकर जलकर भस्म हो जाते हैं, हमें केवल भगवान की सन्मुख आना है, और उनका स्वभाव ही ऐसा है, वो चाहे किसी भी भाव से हम जाते हैं उनके शरण में, देने तो छोड़ो कुछ अर्पण करने तो छोड़ो, कुछ लेने भी जाते हैं ना, तो भी भगवान हमारा सम्मान करते हैं। इस संसार में देखो, हम यदि किसी से कुछ लेने जाते हैं, एक बार जाएंगे, दो बार जाएंगे, चार बार जाएंगे, दस बार, यदि रोज रोज किसी के दर पे मांगने जाएंगे ना, तो वो भी तिरस्कार कर लेगा, कितनी सहायता करूं तुम्हारे, और भगवान क्या कहते हैं जानते हो? भगवान कहते हैं उदारा सर्वे एवं थे, वो सब उदार है जो मेरे सामने कैसे आते हैं, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी, वो चाहे अर्थार्थी धन प्राप्त करने के लिए आए या अपने दुख दर्द को मिटाने के लिए आए, वो सब उधार है, इतना कुछ सम्मान करता है जो मांगने आता है उसका, है ना, उसका तो तिरस्कार कर लिया जाता है, परंतु भगवान तो फिर भी कहते हैं वो उधार है, भगवान के हृदय में इतना इतना स्नेह है उनके प्रति जो उनकी शरण में आते हैं, वो कहते हैं अब तुम्हारी तुम्हारी सुरक्षा का दायित्व मेरा है, तुम्हारी जो वस्तु है, जो कुछ तुम्हारे पास है, उसकी सुरक्षा का दायित्व है, और जिस चीज की कमी है उसे प्रदान करने का दायित्व है मेरा। तो भगवान तो प्रत्येक जीव के हृदय में है, लेकिन यहाँ पर आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं दृश्य बुद्धियादि दृष्टा लक्षण अनुपातक है, अनुमापक है, कि हृदय में होते हुए भी हर किसी को नहीं देखते हैं, उसको देखने के लिए तो हृदय के नेत्रों पर प्रेम का अंजन लगाना पड़ेगा। प्रेमंजना श्रित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोके, संत जन तो सदैव देखते हैं भगवान को, अनुभव करते हैं, और प्रत्येक कार्य को जीव का यदि हम देखते हैं, प्रत्येक लक्षण को देखते हैं, तो फिर हमें भगवान का अनुभव होता है कि भगवान है, क्योंकि हम वास्तव में भगवान के ही अंश हैं, तो हम भी भगवान की तरह प्योर हैं, भगवान की तरह हम भी भगवान के अंश होने के नाते भगवान के ही जैसे हैं। परंतु हम क्योंकि इस भौतिक जगत के साथ हमारा मिलन हो गया है, जिसके कारण हम हमारी चेतना हमारा हृदय मलिन हो गया है, लेकिन जैसे ही हम पुनः भगवान की ओर सन्मुख हो जाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को पुनः निर्माण करते हैं, तो हम पुनः भगवान के जैसा ही स्वरूप धारण करते हैं। इसलिए बस एक ही कार्य करना चाहिए। आगे कहते हैं श्लोक नंबर 36 में, तस्मात् सर्वात्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। ये फाइनल डिसीजन है। एक मनुष्य को यहाँ लिखा हुआ नृणाम, यानी जब मनुष्य देह मिलता है तो उनको बस यही तीन काम करने चाहिए। कौन से? श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्य, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, भगवान का कीर्तन करना चाहिए और भगवान का स्मरण करना चाहिए। और चकार जो च शब्द लिखा हुआ उसका मतलब होता है कि दूसरे जो भक्ति के अंग हैं, भगवान की सेवा करना, भगवान के दर्शन करने के लिए भगवान के तीर्थ स्थलों पे जाना और भक्तों का संग करना, भगवान को भोग लगाना। लेकिन तीन मुख्य कार्य बताए गए, श्रोतव्य कीर्तितव्य से स्मर्तव्य, क्योंकि ये तीन जब होंगे तो बाकी सारी जो 64 प्रकार की भक्ति के अंग हैं वो स्वतः संपन्न हो जाएंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? तस्मात् सर्वात्मना राजन्, सर्वात्मना सभी आत्माओं के लिए क्या कर्तव्य है कि वो सुने, कीर्तन करे, स्मरण करे। किसको? हरि। हरि का मतलब है जो समस्त जीवों के समस्त अमंगल को हरण करता है, जो समस्त जीवों के समस्त दुर्भाग्य को हरण करता है, जो समस्त दुखों का हरण करता है और सब कुछ हरण करके प्रेम प्रदान करता है। ऐसे भगवान हरि के सर्वत्र सर्वदा, सर्वत्र मतलब हर जगह, जहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि कोई एक जगह है यहाँ पर आप कीर्तन कर सकते हो या यहाँ पर आप ये तीन काम नहीं कर सकते। सर्वत्र लिखा हुआ है कि हर जगह पर जाकर यही काम करना चाहिए। और किस समय करना चाहिए? हर समय करना चाहिए, मतलब सब समय सब जगह सब परिस्थिति में जीव को क्या करना चाहिए? श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो मार्केट हो, चाहे वो पार्क हो, चाहे वो पिकनिक पॉइंट हो, चाहे कोई भी सिटी हो, चाहे कोई भी कंट्री हो, अमेरिका हो, लंदन हो, अफ्रीका हो, जापान हो, रूस हो, रशिया, कोई भी जगह अगर जीव अपना कल्याण चाहता है तो उसे ये तीन काम करने चाहिए। भगवान के विषय में बोलना चाहिए, भगवान के विषय में श्रवण करना चाहिए, भगवान को ही स्मरण करना चाहिए। और जब भगवान आपके साथ है तो फिर और कुछ ऐसा नहीं रह जाता जिसको प्राप्त करना है। जानते हो जीव क्यों दुखी होता है? जीव के दुखी होने का कारण क्या है कि वो संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और भगवान को खुश करने की का प्रयास नहीं करता है ना। जीव हमेशा संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करता है, लेकिन संसार क्या कभी किसी से खुश हुआ है? किसी से क्या? यदि भगवान भी संसार में आ जाए ना तो भगवान से भी वो खुश नहीं होता। क्या नहीं किया भगवान को? कौन सा आरोप नहीं है? कौन सा ऐसा आरोप है जो भगवान को नहीं लगा? चोर के लिए उसको है ना, कोई सभ्य व्यक्ति क्या स्वयं को चोर कहलाना चाहेगा? आप में से किसी को बोले कोई कि ये चोर है, ये चोर है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो भगवान उसको कहते हैं कि वो चोर है और वो उसको भी स्वीकार करता है। वो उसको लंपट कहा जाता है, उसको रणछोड़ कहा जाता है। भगवान को भी नहीं छोड़ते, ये संसार भगवान से भी प्रसन्न नहीं होता। तो क्या हम जैसे साधारण व्यक्ति संसार को प्रसन्न कर सकते? नहीं, जीव दुखी इसलिए होता है कि भगवान को छोड़कर संसार को प्रसन्न करने का प्रयास करता है और वो भूल जाता है कि रब राजी तो सब राजी, बस भगवान को खुश करना है, बाकी सब स्वतः खुश हो जाएंगे। सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा स्वतः ही सबको आनंदित कर देंगे। इसलिए प्रयास करना है तो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। कब करना चाहिए? सर्वत्र सर्वदा, हर जगह हर समय। और वो कैसे प्रसन्न होते हैं? श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य, जो उनके विषय में श्रवण करता है, उनका कीर्तन करता है, उनका स्मरण करता है। और दूसरे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक नंबर 37 जो अंतिम श्लोक है, उसमें कंक्लूशन बताते हैं सारे प्रश्नों का, एक बहुत ही सुंदर उत्तर देते हुए कहते हैं, पिबन्ति ये भगवत आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरणसुः सरोरुहान्तिकम्। पिबन्ति, जो पीते हैं, किसको? ये भगवत, भगवत यानी भगवान की आत्मना सता। कौन से भगवान? जो सारे भक्तों की आत्मा है। आत्मा तो यूं तो वो सब पर प्रत्येक जीव के हैं, परंतु जो संत हैं, जो भक्त हैं, उनको अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। आत्मना मतलब जो भक्तों के प्रिय भगवान हैं, उनके कथा अमृत को, कथा अमृत को जो पीते हैं। वास्तव में भक्तों कथा के द्वारा ही कृष्ण मिलेंगे। समस्त जो कल्याण है जीव का इस संसार में, कथा ही अमृत है। कथा के द्वारा ही वास्तविक कल्याण होगा। जो कथा अमृत पीते हैं उससे क्या होगा? कैसे कथा अमृत को कैसे पीना है? श्रवण पुटेशु समृतम, श्रवण पुटेशु मतलब कानों के द्वारा। वैसे संसार के जो रस हैं, वो तो जिह्वा के द्वारा उनका टेस्ट लिया जाता है, लेकिन ये कथा अमृत वह है जो श्रवण यानी कानों के द्वारा, और पुटेशु मतलब कानों के धोनों में भर भर कर जो इस कथा अमृत को पीते हैं, तो उसे लाभ क्या होता है? पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाते हैं। किससे पवित्र हो जाते हैं? विषय विदूषिता शयम, अनादिकाल से विषय भोग के कारण हृदय अशुद्ध हो गया है, अपवित्र हो गया है। सो कथा श्रवण करने से वो हृदय पवित्र हो जाता है। कथा और हृदय की अपवित्रता क्या है? हृदय की अशुद्धता क्या है? कि संसार के भोगों की जो लालसा है, ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, उससे आनंद ले लूं, ये वास्तव में हृदय की सबसे बड़ी अपवित्रता है, सबसे बड़ी अशुद्धता है। और जीव जब भगवान के कथा अमृत को कर्णों के दोनों में भर भर कर पीता है, तो उसका लाभ क्या होता है? पुनन्तिते विषय विदूषिताशयम, अनादिकाल से विषय भोग की जो मलिनता है, जो अपवित्रता है, वो हृदय से पवित्र हो जाता है। और जब हृदय पवित्र हो जाता है, फिर क्या होता है? व्रजन्ति, फिर वो कहाँ चला जाता है? तत्चरण सरोरुहान्तिकम, उस भगवान के चरण चरण कमल के, सरोरुहान्तिकम भगवान के चरण कमल के निकट पहुंच जाते हैं। बस ये कथा ही महाराज परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी समस्त साधना का जो कंक्लूजन है वो निकाल के बता रहे हैं कि यदि आपको कृष्ण प्राप्ति करनी है, यदि हृदय से भौतिक भोगों की लालसा को समाप्त करना है, तो उसका एक ही तरीका है कि क्या करना है आपको? पिबन्ति ये भगवत सताम आत्मना सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु समृता, इस कानों के दोनों में भर भर के बस भगवान की कथा को श्रवण करते जाओ, उससे हृदय पवित्र हो जाएगा। और हृदय में जब भगवान की छवि स्थापित हो जाएगी, तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। बस इसी से आपके समस्त, एक जीव के समस्त प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा। क्या करना है? भगवान की कथाओं को श्रवण करना। एक ही श्लोक में तीन बातें बता रहे हैं कि जो कथा अमृत को पीते हैं, उससे क्या होता है? हृदय पवित्र होता है। और जब हृदय पवित्र होता है, तो भगवत प्राप्ति होती है। वास्तव में कथा को श्रवण करना ही वास्तविक भक्ति है। भगवान की कथा सुनना अपने आप में सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई कथा सुनने से क्या होगा, सुनने के बाद कुछ करना चाहिए, सुनना ही करना है, यही पल है, यही गोल है, और यही तो किया है सुखदेव गोस्वामी के पास बैठकर परीक्षित महाराज ने केवल कथा को श्रवण किया, और कथा को श्रवण करते 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 भगवान के पार्षद लेके गए उनको, है ना। वही करना है हमको किसी शुद्ध वैष्णव से भगवान की कथाओं को, यही यही भागवत का निर्णय है, यही फाइनल डिसीजन है सुखदेव गोस्वामी का कि भगवान की कथाओं को श्रवण, जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे कि भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान कितनी दयालु हैं, भगवान कितने सूर्द हैं, भगवान कितने सुंदर हैं, भगवान कितना प्रेम करते हैं हमारे साथ, तो भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। और यही तो करना है, बस भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, और उसका सबसे बड़ा साधन है कथा। और इसलिए यहाँ पर फाइनल डिसीजन है कि भगवान की कथाओं को श्रवण करने से ही जीव जो है वो भगवत धाम को प्राप्त करेगा। जैसे जैसे सुनते जाएंगे वैसे वैसे भगवान से प्रेम, संसार में आए और संसार के साथ प्रेम किया, इसीलिए बार बार जन्म मरण का चक्कर है। और जैसे ही भगवत कथा श्रवण करते 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 संसार का मोह और आकर्षण समाप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त होगा कि मैं भगवान का हूँ, वैराग्य प्राप्त होगा कि संसार के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर तो क्या आवश्यकता रह जाएगी संसार में आने की। फिर क्या होगा, व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहन्तिकम्, भगवान के चरण कमलों में मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ भागवत में जो जीव के लिए कर्तव्य बताएगा, प्रश्न क्या था कि अतः पृच्छामि संसिद्धिम् योगिनां परमं गुरुं पुरुषस् यस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वदा। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आप मुझे बताइए कि मनुष्य का कर्तव्य क्या है, उसे क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, और जब मरने वाला व्यक्ति जब मृत्यु निकट आ जाए तो उसे क्या करना चाहिए। और फाइनल डिसीजन देते हुए कहा कि बस कथा को कानों के दोनों में भर 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 कर पीना चाहिए, और कथा सुनने से ही जीव पवित्र हो जाएगा, और पवित्र होने के बाद जीव भगवत प्राप्ति कर लेगा। जो हमारे जीवन में हमारे हृदय में एक उत्सव का सृजन कर दे, जो हमारे भीतर एक उल्लास का सृजन करे, जो हमारे अंतर मन में हमारे हृदय में सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, सत्य स्वरूप, रस स्वरूप भगवान कृष्ण की प्रतिष्ठा कर दे, उसका नाम कथा है। इसलिए कथा को कभी कहानी नहीं समझना चाहिए। जब भी कथा श्रवण करने का अवसर मिले तो ये याद रखना चाहिए कि ये जो घड़ी, ये जो अवसर आज हमें मिला है, ये कुछ और नहीं, ये सीधा सीधा भगवत प्रसाद है, भगवत कृपा है जो हमें आज मिला है। और किस लिए मिला है, जीवन परिवर्तित करने के लिए। ये जो घड़ियां हैं ये मिली है किसके लिए, जीवन को असत्य से सत्य की ओर उन्मुख करने के लिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चल पड़ने के लिए, विषाद से प्रसाद की ओर अग्रसर होने के लिए ये घड़ियां मिली हैं। इसके अतिरिक्त तो और कोई कारण नहीं है। किसी भी जगह अवसर के अनुसार तैयार होकर जब हमें कथा श्रवण करने का अवसर मिलता है तो हमें ये समझना चाहिए कि अब भगवान हमें अपने पास बुलाना चाहते हैं, इसीलिए कथा सुनने का अवसर प्रदान किया, हृदय पवित्र होगा और हम भगवत धाम की ओर जाएंगे। निश्चित रूप से कथा के द्वारा ही भगवत धाम जाने का मार्ग उत्पन्न होता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, बस इस भगवत कथा को श्रवण करना ही एकमात्र वह साधन है जिससे हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस तरह पहले दो अध्याय में ध्यान का वर्णन, पहले विश्व रूप प्रदान और फिर हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान करने का वर्णन किया गया, और उसके बाद दूसरे दो अध्याय में यानी अध्याय नंबर 3 और 4 में हृदय को पवित्र और निर्मल करने के लिए श्रवण के विषय में बताएगा, और शुद्ध भक्ति भक्ति सेवा यानी शुद्ध भक्ति सेवा से हृदय पवित्र होगा। और भक्ति जो है उसका प्रारंभ कैसे होगा? सुनने से होगा, क्योंकि प्रथम भक्ति तो श्रवण है। तो श्रवण से मति कृष्ण में लगेगी लगेगी। और सुनने का सबसे बड़ा ध्यान, सबसे बड़ा लाभ यही है कि जो हमारा ध्यान है वो कृष्ण की ओर आकर्षित होता है। तो इसलिए जो ये सूत गोस्वामी से शौनक ऋषि पूछते हैं कि आप श्रवण करने की इतनी महिमा बताई सुखदेव गोस्वामी में, अभी तो हमारी इच्छा हो रही है कि हम अधिक से अधिक श्रवण करें। पहले ही तो हम यहाँ पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, लेकिन अब एतश्रु शुशतम विद्वन सूत नौर हसी भाषी तुम, बस आप यू ही सुनाते जाइए हमको, और हम एतश्रु शुशतम, हम बहुत बहुत उत्सुक हैं आपके मुखारविंद से भगवान के कथाओं को श्रवण करने का के लिए। वे सूत गोस्वामी से कहते हैं, आयु हरति वै पुंसां उद्यन्नस्तं चयन्नसौ तस्यार्ते यत्क्षणोनीत उत्तम श्लोकवार्तया। हे सुत गोस्वामी, सूर्य उदय और अस्त होते ही सब जीवों की आयु क्षीण होती है, परंतु तस्यार्ते यत् क्षणोनीत, परंतु उनकी आयु नष्ट नहीं होती, उनका एक क्षण भी नष्ट नहीं होता। उत्तम श्लोक वार्तया, जो उत्तम श्लोक भगवान की वार्ता को श्रवण करते हैं, कथाओं को श्रवण करते हैं। वास्तव में जीना तो उसी का जीना है जो भगवान की भक्ति करते हुए, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए जीते हैं। वरना वो जो भगवान की भक्ति नहीं करते, जो भगवान की कथाओं को श्रवण नहीं करते, वो तो मानो शव के समान है। वे कहते हैं, तरवह किम न जीवन्ति वस्त्रा किम न श्वसन्त्युत न खादन्ति न मेहन्ति किम ग्रामे पशवो परे। तरव किम न जीवन्ति, जो वृक्ष है क्या वो नहीं जीते? वो भी तो जिंदा है। वस्त्र किम न श्वसन्त्युत, वस्त्र जो लोहार की धोंकनी है क्या वो सांस नहीं लेती? न खाद्यन्ति न मेहन्ति, हमारे चारों ओर क्या पशुगण भोजन नहीं करते? किम ग्रामे पशुओं परे, ये जो पशु हैं क्या वो वीर्य स्खलन नहीं करते? क्या वो संतान उत्पन्न नहीं करते? केवल खाना, सांस लेना या फिर संतान उत्पत्ति करना ही मनुष्य जीवन नहीं है, बल्कि भगवान ने ये जो मनुष्य जीवन दिया है उसका एक ही लक्ष्य है कि हम इस मनुष्य जीवन के द्वारा भगवान के गुणगान करें, भगवान की कथा को श्रवण करें, भगवान की भक्ति करें। ये जो मनुष्य जीवन का प्रत्येक अंग भगवान ने केवल और केवल अपनी सेवा और अपनी भक्ति के लिए दिया है। इसलिए भीले बतारु क्रम विक्रमाने न श्रावत कर्ण पुटे नरस्य जेवा सतीदा दुरी के वसुत न चोपगायत युरुगाय गाथा। बिले बतोरु क्रम विक्रमान, जो कान है वो बिल की समान है, सांपों के बिल की समान है, सदृश है। उरु क्रम अद्भुत कार्य करने वाले भगवान विक्रमान यानी शौर्य यो न श्रवतः, ये जो कान भगवान की लीलाओं को श्रवण नहीं करते, न श्रवती कर्ण पुटे नरस्य, वो मनुष्य जिसके कान भगवान की कथाओं को नहीं सुनते, वो कान कान नहीं है बल्कि सांपों की बिल है। जेवास्ति दादुर केव सूत, हे सूत गोस्वामी, जीवा जो है वो असत्य है, व्यर्थ है, और दादुरे का मतलब मेंढक की तरह केवल टर टर करती रहती है। हे सूत गोस्वामी, ये जीवा जीवा नहीं है, वो तो हमारे लिए काल का आमंत्रण करने वाली मेंढक की तरह, जिस तरह मेंढक सर्प को आमंत्रण कर रहा है, उसी प्रकार जब हमारी जीवा भगवान के कथाओं का गुणगान नहीं करती, नाम का जप नहीं करती, तो वो मेंढक की तरह काल को आमंत्रित करती। न जो पगायत उरुगाय गाथा, जो भगवान की गाथा जो वास्तव में उरुगाय है, गाने के योग्य, जिह्वा के द्वारा यदि कुछ उच्चारण करने के योग्य है, तो भगवान की कथा, भगवान का पवित्र जस है, भगवान का नाम है, लेकिन जो ये काम नहीं करती वो जिह्वा तो यमराज को आमंत्रित करती। आगे कहते हैं, बारह परम पट कीरीट जुष्टम अप्युत्तमांगम नमे मुकुंदम। अप्युत्तमांगम यानी शरीर का जो सबसे उत्तम अंग है वो कौन सा है? हमारा सिर। क्योंकि हाथ कट जाए तो जिंदा रह सकते हैं, पैर कट जाए तो जिंदा रह सकते हैं, परंतु यदि सर कट जाए तो मर जाएंगे। लेकिन ये सर बारह परम पट कीट जुष्टम, बड़े बड़े ताज पहनना, बड़े बड़े पगड़ियों पहनने से इस सर की शोभा नहीं बनती है, पर शोभा तो तब होती है जब ये सिर भगवान नामेन मुकुंदम, मुकुंद के चरणों पर जब ये सिर झुकता है, तभी इस शरीर की शोभा बढ़। शाव करानो कुरुते सपरिया हरे लसत्कांचन कंकरावा। वो शरीर मृतक है, वो हाथ जो भगवान की सेवा नहीं करते, चाहे वो कितने ही लसत कांचन कंकन, कितने ही चमचमाते हुए कंगन से अलंकृत हो, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे हुए नहीं है, तो वे मृतक पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। बरहाई ते नयने नाराणाम लिंगानी वैष्णो निरीक्षतो ये। बरहाइते मोर के पंख के बांति के नयन है, तेते नयन है, वे मनुष्य की आंख भी मोर के जो पंख होते हैं उस पे बनी हुई आंख की तरह है, जो लिंगाने वैष्णव न निरीक्षते, जो भगवान के स्वरूप का दर्शन नहीं करती है। भगवान की दर्शन ना करने वाली आंख आंख नहीं, वो तो सिर्फ मोर के पंख पर छपा हुआ एक छाप की तरह है, वो आंख नहीं है। पादो नृणते तौ दुरुमत जन्म भाजौ क्षेत्राणि नानु व्रजतो हरार्यो। वो पाऊं तो वृक्ष के तनों के जैसे हैं, पादो निराम तो द्रुम जन्म भाजो, वो तो वृक्ष के तनों के जैसे हैं, क्षेत्राणि नानो व्रजतो हरेरिया, जो हरि की पवित्र लीला स्थलों की ओर नहीं जाते हैं। वास्तव में भक्तों, यहाँ पर शौनक आदि मुनिगण अपने संपूर्ण जीवन की तपस्या में जो उन्होंने सार निकाला है ना, वो बता रहे हैं। वे कहते हैं, जीवन शवो भागवता ग्रीणो न जातु मर्त्यो बिलभीतयस्तु। जीवन शवो, वो तो जीवित रहते हुए भी शव के समान है। भागवतांग्री रेणु, जो भागवत यानी जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अंग्री रेणु उनके चरण कमलों की धूल को अपने सिर पर नहीं लगाते हैं, वो दिखने में लग रहा है सांस ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, परंतु वास्तव में वो तो जीते जी मृतक है। न जातु मृत्यु बिलभेत यस्तु, जो केवल प्राण निकल जाने से कोई मरता नहीं है। वास्तविक प्राण, वास्तविक जीवन तो भगवत सेवा है, भगवान के शुद्ध भक्तों की चरण रज को सिर पर धारण करने से ही वास्तव में हमारी आत्मा जागृत होती है। और श्री विष्णु पत्या मनुजस्तुलस्या श्वसन शवो यस्य नावे गंधम। श्री विष्णु पद्या भगवान विष्णु के चरण कमलों पर चढ़े हुए मनुजस तुलसिया जो तुलसी दल है, जो मनुष्य है उनको चाहिए कि उस तुलसी दल की सुगंध खुले, और अगर वो उस सुगंध का आनंद नहीं लेते हैं तो स्वच्छन शवो यस्तु न वेद गंधम, तो भले ही वो कितना ही दिखने में लग रहा हो कि वो सांस ले रहा है, श्वसन श्रवो यस्तु न वेद गंधम, लेकिन फिर भी वो सांस लेते हुए भी मृतिक शरीर की भांति है। तो वास्तविक जीवन जो है वो भगवत सेवा की सेवा ही है। इसीलिए जब महाराज रघुकर्ण ने परम संत जयवर से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्ता अवस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्न अनुसार उत्तर दिया कि रघुगणेश तपस्या न याति। हे महाराजा रघुगण, ये जो वास्तविक उन्नति मैंने की है भक्ति में, जो परमहंस की मुक्त अवस्था प्राप्त हुई है, वो रघुगणेश तपस्या नहीं आती, वो तपस्या से प्राप्त नहीं होती। न चेजया निर्वपराण गृहाद्वा, न ही पूजा करने से, न ही संन्यास ग्रहण करने से, न ही गृहस्थ के कर्तव्य पालन करने से, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्याय, वैदिक स्तोत्रों के उच्चारण या गर्म धूप में अथवा ठंडे जल के भीतर या प्रज्वलित अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी प्राप्त नहीं होती। किससे प्राप्त होती है? विना महत्पाद रजोभिषेकम। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना, अपने आप का अभिषेक किया बिना, विना महत्पाद रजोभिषेक, जब तक भगवान के शुद्ध भक्तों के चरण रेणु को सिर पर धारण नहीं करते, तब तक भगवत भक्ति का लेश मात्र भी प्राप्त नहीं होता। ये भगवान की शुद्ध भक्ति है जिससे जीव का हृदय परिवर्तित होता है, फिर वो संसार के लिए दुख नहीं करता। संसार में चाहे उसे सुख मिले या दुख मिले, लाभ हो या हानि हो, उसे उसमें कोई आकर्षण नहीं रह जाता। इसे उपेक्षा की जाती है कि नियमित भक्ति सेवा करने से हृदय में परिवर्तन अवश्य दिखता है। यदि ऐसा परिवर्तन नहीं होता है तो समझना चाहिए कि हृदय फौलाद का बना हुआ है। इसलिए सोनिक आदि जो ऋषि हैं वो कहते हैं, तदश्मसारम हृदयम वतीदम यत् क्रियमाणैर् हरिनामधैर्येण न विक्रियेता तद यदा विकारो नेत्रे जलं गात्ररूहे सुहर्षम्। तदश्मसारम, तद वह अश्मसारम का मतलब है वह हृदय, हृदयम बतेदम, जो निश्चित रूप से वो हृदय, तो अश्मसारम का मतलब तो वो तो फौलाद का बना हुआ है, यद गृह्यमाण है हरिनाम में, हरिनाम धैर्य, जो नाम जब से शुद्ध होने पर भी न विक्रियेता था यदा विकारो नेत्रे जले गात्र रुहेशु हर्षम, जब वह भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करने पे भी बदला नहीं, जब हर्ष होता है भगवान की कथाओं के द्वारा तो आंखों से आंसू नहीं आते और शरीर के रोम रोम खड़े नहीं होते, वो हृदय तो फौलाद का बना। और इस तरह से दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में शौनिक आदि ऋषि गण सूत गोस्वामी से कहते हैं कि आपके वचन हमारे मनों को भाने वाले हैं, अतः कृपा करके आप हमें यह उसी तरह बताइए जिस तरह से दिव्य ज्ञान में अत्यंत कुशल महान भक्त सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित से पूछे जाने पर उन्हें बताया था। तो इतना आग्रह करने के बाद फिर अब चौथे अध्याय में, उसके बाद चौथा अध्याय, दूसरे स्कंद का चौथा अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें सबसे पहले तो सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को कहते हैं कि मैं आपके इस प्रश्न से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और इसी प्रकार के प्रश्न जो है वो परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से पूछे थे। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज ने इस सृष्टि की रचना के बारे में पूछा है कि इन दृश्य ब्रह्मांडों की सृष्टि के विषय में वे कहते हैं, भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममायया यथेदं सृजते विश्वं दुर्विभाव्य मदीश्वरे। भूय एव विवित्सामि, हे भगवान सुखदेव गोस्वामी, मैं भूय एव विवेक स्वामी में जानने का इच्छुक हूँ क्या भगवान आत्ममाया के भगवान अपनी निजी शक्ति से किस तरह यथेदम सृजते विश्वम, जिस प्रकार इस विश्व का सृजन करते हैं, दुर्विभा मदीश्वरे, जो ऐसा सृजन है जो कि देवताओं के द्वारा भी किया जाना बहुत कठिन है, वो भगवान किस प्रकार से इस संसार का सृजन करते हैं, कृपया बताइए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर किस तरह अपनी विभिन्न शक्तियों तथा विभिन्न अवतारों को इन घटनाओं से भरे जगत के पालन करने में लगाते हैं और एक खिलाड़ी के खेल की तरह फिर से इसे समेट लेते हैं। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान की दिव्य कार्यकलाप अद्भुत है और वे अचिंत्य प्रतीत होते हैं, क्योंकि उनके विद्वान पंडित अनेक विद्वान पंडितों के अनेक प्रयास भी उन्हें समझने में अपर्याप्त सिद्ध होते हैं। तो इस तरह से परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तो एक हैं, चाहे वे प्रकृति के गुणों से अकेले कार्य करें या एक साथ कई रूपों में विस्तार करें, या कि प्रकृति के गुणों के निर्देशन हेतु भारी 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 से विस्तार करें। कृपया इन सारे संशयप्रद प्रश्नों का निवारण कर दें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य के परम विद्वान एवं आध्यात्म में आत्म सिद्ध हैं, अभी तो आप भगवान के महान भक्त भी हैं, अतः आप भगवान के ही समान हैं। तो इतना अनुरोध जब परीक्षित महाराज करते हैं तो फिर सूत गोस्वामी अपना प्रवचन स्टार्ट करते हैं। और परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने जिस प्रकार से ज्ञान दिया उन्हीं शब्दों में वो बताते हैं कि सबसे पहले जब परीक्षित महाराज ने ये सारे प्रश्न पूछे तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या किया, सुखदेव गोस्वामी ने मंगलाचरण किया और अत्यंत ही अद्भुत मंगलाचरण चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 12 से प्रारंभ करते हैं श्लोक नंबर 24 तक। ये परम अद्भुत श्लोक है जिनको उच्चारण करने से हृदय पवित्र होता है, और जब इन श्लोकों को उच्चारण करके जीव भगवान की कथा को प्रारंभ करता है तो शब्द भगवान की ओर से प्रकट होते हैं। तो ये सुखदेव गोस्वामी के द्वारा उच्चरित किए हुए श्लोकास हैं, इनको हम यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे। श्री शुक उवाच नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे यदुद्भवस्था न निरोधलीलया गृहीत शक्ति त्रितयाय देहिनां अंतर्भवाय नुपलक्ष्य वर्त्मने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो भौतिक जगत की सृष्टि के लिए प्रकृति के तीन गुणों को स्वीकार करते हैं। वे प्रत्येक के शरीर के भीतर निवास करने वाले परम पूर्ण हैं और उनकी गतियाँ अचिंत्य हैं। भूयो नमः सत् व्रीजिनच्छिदेस्ता असंभवाय किल सत्त्वमूर्तये पुंसं पुनपारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानां अनुमृग्यदाशुते। मैं पुनः संपूर्ण जगत रूपी तथा आध्यात्मिक रूप उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो पुण्य आत्मा भक्तों को समस्त संकटों से मुक्ति दिलाने वाले तथा अभक्त असुरों की नास्तिक मनोवृत्ति को वृद्धि को विनष्ट करने वाले हैं, जो आध्यात्मवादी सर्वोपरि आध्यात्मिक पूर्णता में स्थित हैं, उन्हें वे उनके विशिष्ट पद प्रदान करने वाले हैं। नमो नमस्ते ऋषभाय सात्वतां विदुर काष्ठा यमुः कुयोगिनां नीरस्त साम्या तिशये नराजसा स्वधामनि ब्रह्मणिरंस्यते नमः। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ जो यदुवंशियों के संगी हैं और अभक्तों के लिए सदैव समस्या बने रहते हैं। वे भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों जगतों के परम भोक्ता हैं, फिर भी वे वैकुंठ में स्थित अपने धाम को का भोग करते हैं। कोई भी उनके समतुल्य नहीं है क्योंकि उनका दिव्य ऐश्वर्य अमाप्य है। यत् कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं यत् वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं लोकस्य सत्यो विदुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। में उन सर्वमंगलमय भगवान श्री भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके यशोगान स्मरण दर्शन वंदन श्रवण तथा पूजन से पाप करने वाले के सारे पाप फल तुरंत ही धुल जाते हैं। विचक्षणाय चरणोपसादनाय संगम व्युदस्यो भयतोन्तरात्मना विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमात् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्वमंगलमयी भगवान श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम करता हूँ। उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से उच्च कोटि के बुद्धिमान जन वर्तमान तथा भावी अस्तित्व की सारी आसक्तियों से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं और बिना किसी कठिनाई के आध्यात्मिक जगत की ओर प्रगत होते। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविद सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम् तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। मैं सर्वमंगलमय भगवान श्री कृष्ण को पुनः पुनः सादर नमस्कार करता हूँ क्योंकि बड़े बड़े विद्वान ऋषि बड़े बड़े दानी यश लब्ध कार्यकर्ता बड़े बड़े दार्शनिक तथा योगी बड़े बड़े वेद पाठी तथा वैदिक सिद्धांतों के बड़े बड़े अनुयायी तक भी ऐसे महान गुणों को भगवान की सेवा में समर्पित किए बिना कोई क्षेम यानी कुशलता प्राप्त नहीं कर सकते। किरात होना द्रपुलिंद पुलकशा आभीर शुंभा यवना कसादया ये नीच पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात होण आंध्र पुलंद्र पुलकश आभीर शुंभ यवन खस आदि जातियों के सदस्य तथा पाप कर्मों में लिप्त रहने वाले अन्य लोग परम शक्तिशाली भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध हो सकते हैं। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार प्रदान अर्पण। प्रचोदताये न पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षण दुर्भूत किलस्यत समीरिषीण ऋषभ प्रसीदता। जिन्होंने सृजन के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में शक्तिशाली ज्ञान का विस्तार किया और सृष्टि तथा अपने विषय में पूर्ण ज्ञान की प्रेरणा दी और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए प्रतीत हुए वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। भूतेर महत्थे य इमा पुरो विभू निर्मायशेते यदमूषु पुरुष भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मका सोलंकृशिष्ट भगवान वचांसि मे। ब्रह्मांड के भीतर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बनाते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों से के 16 विभागों के अधीन करते हैं, जो जीव के जनक रूप हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मेरे वचनों को अलंकृत करने के लिए प्रसन्न हो। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वीधसे पपुर्ज्ञानमयं सौम्यम् यन्मुखं गुरुहासवम्। मैं वसुदेव के अवतार श्रीला व्यास देव को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने वैदिक शास्त्रों का संकलन किया। शुद्ध भक्तगण भगवान के कमल सदृश मुख से टपकते हुए अमृतोपम देवीय ज्ञान का पान करते हैं। इतना मंगलाचरण करने के बाद, प्रणाम करने के बाद, फिर ब्रह्मा जी का के विषय में बताते हुए शुभदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कहते हैं कि जो प्रश्न तुमने मुझसे पूछे हैं, वही प्रश्न नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था। और शुभदेव गोस्वामी कहते हैं, एतदेवात्मा भूराजन् नारदाय विपृच्छते वेद गर्भोभ्यदात् साक्षात् यदाह हरिरात्मना। एतद् देवात्मा भूय राजन्, एतद् इस विषय में एव इसी तरह आत्मभू, आत्मभू माना वो ब्रह्मा जी जो स्वतः भगवान से प्राप्त हुए हैं, तो नारदाय विप्रच्छत ऐसे ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने पूछा था। और वेद गर्भो व्यदात साक्षात, वेद गर्भो अर्थात जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से संपर्क संपक्त थे, यानी कि जैसे ही वो प्रकट हुए तो भगवान ने उनको वैदिक ज्ञान प्रदान किया, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि साक्षात यदा हरिर आत्मना साक्षात अदाह प्रत्यक्ष जो उन्होंने जो कहा था हरिर आत्मना वो जो भगवान से उत्पन्न हुए। हे राजन, नारद द्वारा पूछे जाने पर प्रथम जन्म ब्रह्मा जी ने इस विषय में ठीक वही बात बताई जो भगवान ने अपने पुत्र यानी ब्रह्मा से प्रत्यक्ष कही थी, जिन्हें जन्म से ही वैदिक ज्ञान धारण कराया गया था। तो ये सब ब्रह्मा जी ने क्या बताया? नारद मुनि ने ब्रह्मा से पूछा और ब्रह्मा ने कौन सा ज्ञान बताया? जो साक्षात भगवान ने, साक्षात यदा हरिरात्मना जो भगवान ने उन्हें ज्ञान दिया था वही ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को बताया। इसलिए अब मैं आपको नारद मुनि को जो ब्रह्मा जी ने बताया था वही ज्ञान जो ब्रह्मा जी को भगवान ने बताया था अब मैं आपको वही ज्ञान बताने वाला हूँ। यहाँ से अध्याय 5वां शुरू होता है जिसका शीर्षक है समस्त कारणों के कारण। तो यहाँ तक हमने देखा पहले दो अध्यायों में ध्यान का वर्णन, पहले विश्व रूप का ध्यान, उसके बाद हृदय में बैठे हुए परमात्मा का ध्यान, दूसरे दो अध्याय में हृदय को पवित्र और निर्मल करने के लिए श्रवण ही साधन है, और अब अगले 3 अध्यायों में भगवान को जानने के लिए जो उत्पत्ति का वर्णन जो नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं उसका वर्णन आ रहा है। तो यहाँ पर नारद जी हाथ जोड़कर कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे पिताश्री, ये सारी सृष्टि तो आप ही ने बनाई है ना, ये दुनिया तो आपके हाथ में ऐसे है जैसे अखरोट। तो ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी अपने कानों पर हाथ लगा रख देते और बोलते, नहीं नहीं बेटा, ये सृष्टि मैंने थोड़ी बनाई है, मैं थोड़ी भगवान हूँ, मैं तो भगवान का एक सेवक हूँ। भगवान ने मुझे उत्पन्न करते हैं और भगवान ही मुझे आज्ञा प्रदान करते हैं, तभी तो मैं सृष्टि का सृजन करता हूँ। और ब्रह्मा जिन्होंने ये पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, वो ब्रह्मा जी इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मैं भगवान हूँ। और फिर ब्रह्मा जी बताते कि मैं तो भगवान का सेवक हूँ, लेकिन जब ब्रह्मा ये नारद मुनि को ये पूछने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन नारद मुनि क्यों पूछ रहे हैं? क्या ताकि ये पता चले कि जो साक्षात ब्रह्मा जी हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड को सृजन करते हैं, उन्होंने भी कभी ये स्वीकार नहीं किया कि मैं भगवान हूँ। तो ब्रह्मा जी के बनाए हुए उल्लू के पट्टे यदि अपने आप को भगवान कहें तो उन्हें गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो बनाया नहीं जाता, भगवान तो भगवान होता है। वह भगवान जिन्होंने ब्रह्मा जी को बनाया, वह ब्रह्मांड जिनके सांस लेने से असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, वह भगवान है। तो कोई आज तो ये तो प्रश्न हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, और ब्रह्मा जी का उत्तर भी कि संसार का कोई भी व्यक्ति जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के इस चक्कर में फंसने वाला है, जो कर्मों के अंदर फंसते हैं, वो भगवान नहीं हो सकता। और भगवान के विषय में तो साफ बताया आचार्य गण, कहते कोई बोले ना कि मैं भगवान हूँ, तो उसको बोलो ठीक है बता दो, आप भगवान हो, मानने के लिए तैयार है, आप अपना विश्व रूप बता दो जरा। अर्जुन ने तो अपना विश्व रूप दिखाया था ना भगवान को, अर्जुन को तो भगवान ने अपना विश्व रूप दिखाया था भगवद गीता के 11वें अध्याय में, आप विश्व रूप दिखा दीजिए हम आपको स्वीकार करेंगे। तो वो तो वही दिखा सकता है जो भगवान हो। आप ठीक है, आप विश्व रूप नहीं दिखा सकते, भगवान जब भगवान ने कश्यप अवतार धारण किया था तो मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया था, आपके आप भी जरा लेटिए, हम आपके पीठ पर, मंदराचल पर्वत तो नहीं, 100 किलो का पत्थर रहना रखते हैं और उससे मंथन करते हैं, और वो जो मंदराचल पर्वत है जब उसकी रगड़ हो रही थी, उससे जब रगड़ा जा रहा था, जब मंथन किया जा रहा था, तो कच्छप अवतार में भगवान को बड़ा आनंद आ रहा था, ऐसा अच्छा लग रहा था उनको, जैसे कोई सहला रहा है। तो हम भी जरा आपकी पीठ पर 100 किलो का पत्थर रख के एक आध घंटा उसको सहलाएं, देखिए आपको आनंद आता है। तो यहाँ पर राधा गोविंद महाराज बहुत बताते हैं कि आजकल तो कोई भी भगवान बनने के लिए तैयार है, लेकिन भगवान केवल किसी के कहने या बोलने से नहीं बनता, भगवान तो वह होता है जो अद्भुत कार्य करे। उसके बाद संसार की सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में, सबसे पहले ब्रह्मा की उत्पत्ति के विषय में बताया जाता है कि किस प्रकार से भगवान अपने आप को एक्सपेंड करते हैं, कारण दक्षिण विष्णु के रोम कुपों से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, प्रत्येक ब्रह्मांड में जो गर्भोदक्षाय विष्णु है वो प्रकट होते हैं, और गर्भोदक्षाय विष्णु की जो नाभि है, वो जो स्थान है नाभि का स्थान, वो नीला हो जाता है और वहां से कमल की नाल उत्पन्न होती है, और वो बहुत ही विशाल कमल की डंडी होती है, और उसके अंदर 14 लोक, जो संसार इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर जो है अतल वितल पृथ्वी के ऊपर जनलोक तपलोक महरलोक सिद्धलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक, और नीचे अतल वितल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये सारे लोक हैं, और ऊपर जो है वो सत्यलोक है, कमल है जहाँ पर ब्रह्मा जी विराजते हैं। और ब्रह्मा जी बहुत बहुत खोज करते हैं कि आखिर मेरी उत्पत्ति कहाँ से आई है, तो उतना खोज करने के बाद भी उन्हें कोई प्राप्त नहीं होता है, एक और उन्हें एक शब्द सुनाई देता है, तपह तपह, और शुद्ध सरस्वती जो है वो उनको एक मंत्र देती है, गोपाल मंत्र अष्टादश अक्षर का, जो और फिर शुद्ध गोस्वामी बताते हैं, देव्यम सहस्त्रादमामोघदर्शनो कि ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्ष तक तपस्या की, और ये जो तपस्या है वो जीव आत्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते। और श्लोक नंबर 2.9.19 में ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, बेटा नारद, मेरी तपस्या से विष्णु भगवान बहुत प्रसन्न हुए और तम्प्रियमाणं समुपस्थितं कविं प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणं बाबाश ईषत् स्मितशोचिशाकिरा प्रिय प्रियं प्रीतमनाकरिस्पृशन् तं प्रियमाणं समुपस्थितं कविं। हे मेरे प्रिय पुत्र, मेरे सामने भगवान जो है वो मेरे सामने उपस्थित हुए प्रजा विसर्गे निज शासनार्हण। भगवान ने मुझे इस योग्य समझा कि मैं भगवान के आज्ञा अनुसार इस सृष्टि का, प्रजा का उत्पन्न करूं, नियंत्रण करूं, करने के उपयुक्त मुझे पात्र समझा। और बाबाश ईशस्मित शोच शागिरा बाबाशे अर्थात संबोधित किया, ईशत मंद मंद स्मित हंसते हुए, शोचिता अर्थात उत्साह वर्धक गिरा वाणी से, और प्रिय प्रियतम प्रिय यानी प्रिय और प्रियम अर्थात प्रेमी को प्रीतमना अत्यंत ही प्रसन्न होकर, जिस तरह से एक प्रीतम प्रेम के साथ अपनी प्रेमिका से प्रिय प्रिय प्रियम प्रीतमना करे स्पृशन, करे स्पृशन मतलब कर कहते हैं हाथ को, स्पर्श मतलब छूते हैं। तो भगवान ने मुझे हाथ मिलाया, मुझे हाथ स्पर्श किया और मुझे इस प्रकार से संबोधित किया। और भगवान ब्रह्मा जी से कहते हैं, त्वयाहं तोषितः सम्यक् वेद गर्भस्य शिक्षया चिरं वृतेना तपसा दुस्तोष कूट योगिनां। भगवान ने कहा, हे वेदों में संपृक्त ब्रह्मा जी, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हो गया हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न होता हूँ, परंतु जो भक्ति से प्रेम से मेरी आराधना करते हैं उनसे मैं अति शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ। और तुम तो जानते हो कि मैं समस्त वरों का देने वाला हूँ। वरम वरयः भद्रं ते वरेशम सा वरेशम माभिवांछितम् ब्रह्मश्रय परिश्रामः पुंसं मद्दर्शनावधि। हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहे मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों को का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। तो ब्रह्मा जी को भगवान कहते हैं, मेरा दर्शन तुम्हें मिल गया, फिर भी ये तो सबसे बड़ा वर है, लेकिन फिर भी यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यदि कुछ मांगना चाहते हो तो मांगो। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि आपका दर्शन हो गया, मेरी सारी मनोकामना पूरी हो गई, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं, अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंत ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। तथापि हे भगवान, मेरी फिर भी आपसे ये प्रार्थना है, तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथय नाथितम परावरे यथा रूपे जानीयाम ते स्वरूपिणा। हे कृपया करके मुझे ये बताइए कि दिव्य रूप के होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार प्रकट करते हैं, यद्यपि आपका ऐसा कोई स्वरूप तो है ही नहीं है। तो कृपा करके मुझे अपने विषय में बताइए और आप किस तरह से संसार को सर्ग करते हो, मुझे ये बताइए, जैसे आपकी आज्ञा अनुसार मैं इस विषय की शिक्षा प्राप्त कर सकूं और इस तरह ऐसे कार्य से आबद्ध हुए बिना जीव आत्माओं को यंत्रवत उत्पन्न करने का कार्य कर सकूं कि संसार में तो जो भी किसी भी जीव को उत्पन्न करता है तो उससे क्या होता है, उसके अंदर आसक्ति हो जाती है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, मैं तो जो सृष्टि को रचने वाला हूँ तो बार बार उसका विनाश होगा, तो आप कृपया मुझे बताइए। तो ब्रह्मा जो है वो नारद मुनि को सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में बताते हैं, चतुर्श्लोक की भागवत का उपदेश देते हैं, और फिर सुखदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान की कथा को श्रवण करने से ही जीव का कल्याण हो। मतलब भगवान से ब्रह्मा जी ने ये प्रार्थना की कि आपने मुझे जिस उद्देश्य से उत्पन्न किया है सृष्टि की रचना करने के लिए, तो कृपया आप बुद्धि दीजिए जिसके द्वारा मैं ये कार्य को अच्छे से कर सकूं। तो फिर भगवान ने ब्रह्मा जी को चार श्लोक में भागवतम सुनाया, चतुर श्लोक की भागवत। चार में ही क्यों दिया? क्योंकि वेद चार हैं, ब्रह्मा जी के मुख चार हैं, तो वेदों का भी सम्मान रखना था, तो इसलिए भगवान ने चार श्लोक में चतुर श्लोक की भागवतम ब्रह्मा जी को सुना। तो यहाँ बहुत ही सुंदर शब्द लिखे हुए हैं, श्रवतः श्रद्धया नित्यम ग्रंथश्च सचेष्टितम कालीन अति दीर्घेण भगवान विशते हृदि। श्रवत श्रद्धया नित्यम, जो बहुत सदैव बहुत ही श्रद्धा के साथ प्रेम के साथ इस श्रीमद् भागवतम को श्रवण करता है, और ग्रहणश्च स्वचेष्टता, उसको ग्रहण करता है। किस तरह से? स्वचेष्टता, चेष्टता का मतलब होता है प्रयास से, कि प्रयास तो गंभीरता पूर्वक करना पड़ेगा। राजस्थान का इलाका था, वहां पर मई और जून की बहुत गर्मी चल रही थी, उस समय एक माता जी ने जो लकड़ी के कांडे हैं उनके ऊपर प्रसाद बनाया, और जब उसका पति आया तो उसको प्रसाद दो तीन घंटे के प्रयास के बाद जो बहुत ही सुंदर प्रसाद बना उसके सामने रखा और बोला, पतिदेव प्रसाद ग्रहण कीजिए। और जैसे पति ग्रहण कर रहा था तो उसको पंखे से हवा करने लगी, लेकिन देखा गया ध्यान से तो पति जब प्रसाद खा रहा था तो उसके पसीने छूट रहे थे। तब उन्होंने कहा, माता जी ने कहा, पतिदेव इतनी गर्मी में रोटियां बनाई मैंने, सब्जी बनाई, तीन घंटे की मेहनत की, और आपको प्रसाद देने के बाद आपको पंखा भी मैं चल रही हूँ और पसीना आपको निकल रहा है। तब उस पति ने कहा कि फिर है ना, चबा कौन रहा, तुम्हारा बाप? मतलब जो चबा रहा उसमें भी तो मुझे मेहनत लग रही है। तो उसी तरह से हमारा भी हाल है, वेद व्यास जी ने, भगवान ने वेद व्यास जी का अवतार धारण किया, सारे वेदों को संकलन करके दे दिया, हमको संस्कृत समझ में नहीं आती थी तो श्रील प्रभुपाद जी ने सारे जितने भी श्लोकास हैं उन सबका परपट लिख कर दे दिया, उनके मीनिंग लिख कर दे दिए, और जितने भी शुद्ध भक्त हैं रिस्कॉन डिजायर ट्री में और यूट्यूब में, और हम सबको इतने सुंदर तरीके से एक एक श्लोक को समझाते हैं, लेकिन हम खाली बैठ के सुनते हैं उसमें भी पसीना निकलता। तो यहाँ साफ साफ बोल रहे हैं, ग्रहणतश्च सचेष्टतम, तो इसमें भी पसीना मिलेगा, पसीना जरूर निकल रहा है, क्योंकि हालांकि तैयारी सब वेद व्यास जी ने की, रात रात भर जाग कर श्री प्रभुपाद जी ने सारे तात्पर्यों को लिखा, अनुवाद को लिखा, उनके भक्त तो अब किधर जाना ही नहीं पड़ता, घर पे बैठ के व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर या इस्कॉन डिजायर में हमको श्लोकास और ये सब सुनने को मिलता है, लेकिन फिर भी इसलिए जो यहाँ शब्द लिखा है श्रवण, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और श्रवण के तीन अंग हैं। काम से तो केवल जानकारी हासिल होती है, सिर्फ साउंड जाती है, और जो साउंड भी मैं बोल रही हूँ अगर वो भाषा आपको नहीं आती है तो शब्द कोरे, उनके अंदर कोई ज्ञान नहीं है, वो तब तक समझ में नहीं आएंगे। तो काम से तो केवल इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती है, और मन को मनन करने की शक्ति है, तो केवल कानों के साथ नहीं मन के साथ भी श्रवण करना चाहिए, मन को लेकर सत्संग में आना चाहिए श्रवण करने के लिए। और मन एक जगह बैठता नहीं है, ऐसा कहते हैं पीपल का पन, हाथी का कन और आदमी का मन एक जगह पर बैठता नहीं है, इसलिए कथा के बीच में बार बार कहना पड़ता है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। और केवल मन से मानना ही काफी नहीं है, यहाँ साफ लिखा है ग्रहणतस्य सचेष्टता, बहुत ही प्रयास से ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि कान से सुन भी लिया, मन ने उसको स्वीकार भी कर लिया, लेकिन यदि जीवन में परिवर्तन नहीं आया तो वास्तविक लाभ प्राप्त नहीं होगा। हम देखते हैं बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जिनको श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक रटे हुए हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन आता नहीं है, वो वही कार्य करते हैं, वही अपराधजनक जानवरों को मार के खाते हैं, मांसाहार करते हैं, नशा करते हैं। तो तीसरा अंग जो श्रवण का है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। गृहस्थस्य स्वचेष्टता, मन तो केवल मानता है परंतु भक्ति करने का जो कार्य है वो हृदय का काम है, वो भक्ति हृदय से की जाती है। और जब हृदय के अंदर कृष्ण के लिए प्रेम उत्पन्न होता है तभी तो जीव भगवान के लिए जो समस्त वस्तुओं का परित्याग करता है, अपने आनंद का परित्याग करता है, क्योंकि प्रेम हो जाता है हृदय। और यदि कोई ऐसा करेगा तो क्या होगा, क्या बहुत समय लगेगा? नहीं, यहाँ साफ साफ बताया जा रहा है, काले नाती दीर्घेण, ज्यादा समय नहीं लगेगा, फौरन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भगवान विशते हृदय, भगवान हृदय के अंदर आकर विराजमान हो जाएंगे, प्रकट हो जाएंगे। अरे कहाँ से प्रकट होंगे? प्रवेष्टुम करण रंध्राणाम, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भागवतम के दूसरे स्कंद का श्लोक है कि भगवान यदि हृदय के अंदर प्रकट होते हैं तो उसका रास्ता कानों के द्वारा, भगवान आंखों से नहीं देखे जा सकते। आंखों से तो दुर्योधन ने भी देखा था, कंस ने देखा था, रावण ने देखा था, लेकिन हृदय में तो स्थापित नहीं हुए। हृदय में तो उनके स्थापित होते हैं जो बहुत ही प्रेम से भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं। प्रवेष्टुम करण रंध्राणाम स्वनाम भाव सरोरुहम, क्योंकि जैसे जैसे कथा को श्रवण करते हैं तो हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होता है। और क्या होता है? धुनोति समलम कृष्ण, भगवान सारी मेल को, सारी गंदगी को साफ करते। तो भगवान कहाँ से कानों में प्रवेश करते हैं? प्रविष्टम करण नंद्राणाम, इसका उदाहरण रुक्मणी है। रुक्मणी ने भगवान को देखा नहीं था, केवल भगवान के शौर्य के विषय में, भगवान के सुंदरता के विषय में, भगवान के बल के विषय में श्रवण किया था। और हृदय में भगवान इस प्रकार स्थापित हो गए कि भगवान के अतिरिक्त और कुछ न देखने की इच्छा थी, न श्रवण करने की इच्छा थी। तो भगवान कान के द्वारा कानों के अंदर प्रविष्ट करते हैं स्वना भाव सरोरुहम, और जैसा जिसका भाव होता है, वात्सल्य भाव से देखते हैं तो भगवान आपके बच्चे बन के आ जाएंगे, यदि मित्र भाव से देखते हैं तो भगवान आपके मित्र बन जाएंगे, यदि प्रीतम के भाव से देखते हैं तो भगवान आपके प्रेमी बन के आ जाएंगे। वो जैसा आपका भाव है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जिस भाव से आप उनको स्मरण करोगे उसी भाव से वो प्रकट होंगे। और आगे क्या करेंगे, क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से सुनने की चीज है। दुनोति शमनम कृष्ण, हृदय के अंदर जन्म जन्मांतर से जो भौतिक मेल जमी हुई है, जो भौतिक आकर्षण और भौतिक आसक्ति का जो गंदगी जमा की हुई है, उस सबको भगवान साफ करेंगे। वो कृष्ण स्वयं आकर हृदय की समस्त गंदगी को साफ करते हैं, इसलिए भगवान को माता कहा जाता है। जैसे माता है वो अपने बच्चे की गंदगी को देख कर वो क्या करती है, वो उसको दूर नहीं करती, बल्कि वो तो और भी उसे करीब लाके उसको स्वच्छ कर देती है। उसी तरह भगवान भी हमारे समस्त अपराधों को नष्ट कर देते हैं। ये कैसे होता है कि जब हम भगवान की करुणा की, भगवान के प्रेम की, भगवान के बहुत बहुत कृपा की जब हम कथाएं सुनते हैं तो कर्मों के द्वारा, जब भगवान हृदय में जाते हैं तो हृदय पिघल जाता है, और जो संसार घुस गया है हृदय में, जो जो मूर्तियां बनी हुई हैं जन्म जन्मांतर से, अपने मित्र की मूर्ति, किसी किसी बॉयफ्रेंड की मूर्ति, किसी पति की मूर्ति, किसी पत्नी की मूर्ति, धन बंगलो कार गाड़ी, ये सब के प्रति जो आसक्ति है, वो सब आसक्ति समाप्त हो जाती है और उसकी जगह पर कृष्ण प्रेम स्थापित हो जाता है। यही भागवत श्रवण करने का उद्देश्य है, यही भागवत श्रवण करने का एकमात्र उद्देश्य है कि भगवान की कथाओं को श्रवण करके हमारा हृदय पिघल जाए, और हृदय के अंदर पिघलने से सारी जितनी भी आकृतियां हृदय में बनी हुई हैं, वो सब आकृतियां, वो सब आकर्षण दूर के समाप्त हो जाए, और हृदय के अंदर राधा गोविंद देव, राधा मदन मोहन, राधा रमण जी, रमांके बिहारी जी आकर स्थापित हो जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, जब मैंने भगवान से भागवत सुनी तो मेरा मन भगवान में आकर्षित हो गया, और अब मैंने भगवान के चरणों को इस प्रकार से पकड़ लिया है कि अब मेरी बुद्धि गलत निर्णय नहीं करती। इसलिए अब मैं वही करता हूँ जो भगवान मुझे आदेश देते। तो इस तरह से दो अध्यायों में ध्यान, उसके बाद दूसरे दो अध्याय में हृदय की पवित्रता और निर्मलता श्रवण करने के माध्यम से, और उसके बाद अगले तीन अध्यायों में उत्पत्ति का वर्णन कि संसार उत्पत्ति कैसे हुई, और तीन अंतिम अध्याय में उपपत्ति, उपपत्ति मतलब भगवान की प्राप्ति, अपने स्वरूप में स्थिति, उसके तीन अध्याय। जैसे अभी हमने पढ़ा आठवें अध्याय में ये श्लोक हैं जो अभी हमने पढ़े, प्रवेशम करुण नंद्राणाम, और नवे अध्याय में क्या है, चतुर्श्लोक की भागवतम है, और इस चतुर्श्लोक की भागवतम में ब्रह्मा जी को भगवान ने तीन सिद्धांत सिखाए, और ये जो तीन सिद्धांत है वो महाप्रभु की कृपा के बिना किसी को सुनने को भी प्राप्त नहीं होते, समझ में आना तो बहुत दूर की बात है। इन चार श्लोकों में भगवान ने तीन सिद्धांत बताए, ज्ञानम विज्ञानम तदंगम रहस्यम। ज्ञान बताऊंगा, विज्ञान बताऊंगा, उसके अंग बताऊंगा और रहस्य बताऊंगा। सॉरी, ये चार चीजें, ज्ञानम विज्ञानम तदंगम रहस्यम, चतुर्श्लोक की भागवतम में ये चार श्लोकों में ये चार सिद्धांत बताए जाते हैं। पहले क्या बताऊंगा, ज्ञान बताऊंगा। ज्ञान क्या है कि भगवान श्री कृष्ण से हमारा क्या संबंध है, वो ज्ञान जिससे भगवान के साथ हमारा संबंध का ज्ञान हो, आत्मा का ज्ञान। और उसमें भगवान ने बताया पहले कुछ भी नहीं था और फिर मैं सब कुछ मेरे से प्रकट हुआ, मैंने प्रत्येक वस्तु और व्यक्तियों को प्रकट किया और फिर अंत में सब मुझ में समा जाएगा। यही ज्ञान है कि भगवान श्री कृष्ण ही सबकी उत्पत्ति का कारण है, सब को पालन करते हैं और प्रत्येक वस्तु उन्हीं के द्वारा समाप्त हो जाती है। जो कुछ हो रहा है वो भगवान की कृपा और भगवान की शक्ति से हो रहा है। आदिर अनादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ये ब्रह्मा जी ने कब बताया, जब भगवान से ज्ञान प्राप्त, जब ये भागवत भगवान के मुख से सुनी तब उनके मुख से निकला ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। ये ज्ञान है। और विज्ञान क्या है, विज्ञान है अभिदेह यानी भगवान की सेवा। ज्ञान प्राप्त हो जाए कि आप भगवान के हैं तो फिर भगवान की सेवा करना ही आपका एकमात्र कार्य रह जाता है। तदंगम, उसके अंग क्या है, जो नवदा भक्ति है वो ही इस सेवा के अंग हैं। और वहाँ भगवान कहते हैं जो मुझसे अलग देखता है वही माया है, केवल मैं ही हूँ और मेरी सेवा करना ही तुम्हारा एकमात्र कर्तव्य है। और उसके बाद भगवान ने अंतिम बात बताई, रहस्यम, और ये सबसे बड़ा राज है। और शिला प्रभुपाद जिसका अर्थ लिखते हैं कृष्ण प्रेम, यही बात भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं। गुह्य तमम जो ज्ञान है भगवान कहते हैं वो क्या है, भक्तिमयी प्रेममयी सेवा। इसलिए श्री प्रभुपाद जी ने हमेशा भक्ति को लविंग डिवोशनल सर्विस कहा है कि प्रेम के साथ भगवान की सेवा करना यही वास्तविक प्रयोजन है। तो चतुर् श्लोकों में कौन से सिद्धांत है, पहला सिद्धांत संबंध ज्ञान, दूसरा सिद्धांत अभिदेह अर्थात भगवान की सेवा, और तीसरा कृष्ण प्रेम जो हमारा प्रयोजन है। संबंध ज्ञान और अभिदेह और प्रयोजन, यही सारे शास्त्र का वास्तविक तत्व है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जीव को भगवान के विषय में अपने वास्तविक जो स्वामी है उसके विषय में पता होना चाहिए। आजकल तो कोई भगवान के विषय में ज्ञान भी प्राप्त नहीं करता, किसी से पूछो भगवान कौन है तो वो कहते हैं सभी भगवान है, किसी की भी फोटो लगा दो तो भगवान है। ये तो श्री प्रभुपाद जी कभी बोलते हैं कि किसी स्त्री से पूछा जाए भाई तुम्हारा पति कौन है और वो कहे सभी पति है, ये कोई उत्तर है, ये कोई बुद्धिमाने का उत्तर है, पति के विषय में उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसी तरह से भगवान के विषय में हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, पूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि वो कौन है, जिसने संसार को रचा, जिसने ब्रह्मा जी को रचा, जिसने हमें बनाया, जो कि हमारे स्वामी हैं, जिनकी हमें सेवा करनी है। श्रीला प्रभुपाद जी साफ साफ बता दें, भगवान का पता चाहिए, भगवान का नाम बताओ, कृष्णा जिनका नाम है गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम। कोई गोकुल में जाए और पांच सात कृष्ण मिल जाए तो साफ पता है यशोदा जिनकी मैया है नंद जी बाबैया है, जो यशोदा जी के पुत्र हैं, नंद के लाडले हैं, और राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माया है, ऐसे श्री भगवान को। तो बोला अच्छा काम क्या करता, लूट लूट दही माखन खायो, ग्वाल माल संग वेणु चराओ, लूट लूट कर माखन खाता है, गैया चराता है, खाली चोरी करता है, काम भी करता है। हाँ काम बड़े बड़े काम करता, गज को ग्राह के फंद छुड़ायो और द्रौपदी सुता को लाज बचायो, बड़ा काम करता अपने भक्तों को। अच्छा ये कहाँ मिलेगा, कुरुक्षेत्र को युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनायो, गीता में मिलेगा, ले जाइए पढ़िए और प्राप्त कर लीजिए भगवान को, अवश्य मिलेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं पूरा पता है ये कृष्ण का, फोन नंबर चाहिए डायल करो, 16 डिजिट का है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, रोज ट्रायल करो, रोज बात करो भगवान से। लेकिन वहाँ पर यदि आपका संबंध नहीं होगा ना तो अननोन नंबर नहीं उठाता है वो, इसलिए संबंध स्थापित करना आवश्यक। तो चतुर्श्लोकी भागवतम में ये तीन बातें बताई गई हैं, भगवान के विषय में ज्ञान अर्थात संबंध ज्ञान, और भगवान की सेवा में संलग्न होना अर्थात अभिदेह, और उसका प्रयोजन क्या है, उसका प्रयोजन है हृदय में कृष्ण के प्रेम की उत्पत्ति होना। और श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के अंतिम अध्याय में भागवत सारे प्रश्नों का उत्तर है, उसके अंदर 10 विषयों का वर्णन किया है जो हम कल पढ़ेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।